तो एक आयु कर्म के बारे में समझ लें, फिर उसके बाद जो है आज जैन आध्यानाचार के अंतर्गत श्रवणाचार समझी में, इसमें जो श्रावकाचार है वो तो परसों मैं खुद पढ़ाऊंगा, जो अध्याय आएगा पांचवा सातवां अध्याय तो परसों श्रावकाचार तो पूरा पढ़ाऊंगा, पर फिर भी इस वाली क्लास में भी बता दूंगा क्योंकि कुछ लोग तो परसों नहीं कर पाएंगे सुबह। आज थोड़ा सा आयु कर्म के बारे में समझ लें कि आयु कर्म बाकी कर्मों से उसके बंधन की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल अलग है। आयु कर्म किसी भी व्यक्ति के जीवन में 8 मौकों पर ही बनता है। 7 कर्म तो निरंतर 24 घंटे, कोई भी ऐसा समय नहीं है जबकि हमें 7 कर्म ना बंधते हो। अब ये बात अलग है कि उन 7 कर्मों में से किस कर्म में ज्यादा स्थिति पड़ेगी, किस में कम पड़ेगा। जैसे अपन कोई अच्छा भाव करते हैं, ये भी अपन समझ लें, जैसे कोई अपन ने अच्छा भाव करा, अपना मन जिस समय अच्छा है उस समय जो अच्छे कर्म है, उन सब कर्मों में अच्छे बुरे दोनों तरह के कर्म हैं, ये भी अपन कभी एक आध दिन बैठेंगे तो ऐसे ही जनरल 148 में कौन से शुभ कर्म है कौन से अशुभ कर्म है, पुण्य प्रकृतियां कौन सी है पाप प्रकृतियां कौन सी है, क्षेत्र विपाकी प्रकृतियां अलग होती हैं, पुद्गल विपाकी प्रकृतियां अलग है, जीव विपाकी अलग है, ये भी एक आध दिन कभी कर लेंगे। वो बहुत डीप स्टडी, इसलिए मैंने अभी नहीं टच किया कि एकदम डीप हो जाएगी, एमए के कोर्स की बात हो गई, फर्स्ट अपन पढ़ रहे हैं तो एक जनरल टच हो गया। उसमें 7 कर्मों में क्या होता है, अपन कोई अच्छा भाव करते हैं तो जो अच्छे कर्म है उनमें स्थिति अनुभाग ज्यादा पड़ेगा, मतलब उनको ज्यादा मटेरियल मिलेगा और बाकी कर्मों में कम, पर होगा सबके लिए। डिवाइडेशन 7 कर्मों में होता है, जबकि अपन कोई भाव करते हैं तो 7 कर्मों में कुछ ना कुछ जाएगा। किसी के ज्ञान में बाधक बने तो ज्ञानावरणी कर्म अकेला नहीं बंधेगा, उसके साथ बाधित बाकी कर्म भी जो बंध रहे हैं उनमें भी थोड़ी बहुत स्थिति अनुभाग पड़ेगा ज्ञानावरण के साथ में। ज्ञानावरण में सबसे ज्यादा रहेगा, बाकी भी कम हो जाएगा। इस तरह से जो है डिवाइडेशन होता है कर्मों में, उनकी संख्या क्वालिटी तो निर्धारित हो गई कि ज्ञानावरणी कर्म बंधेगा, पर बाकी जो कर्म है उन सब में भी थोड़ा थोड़ा उसका भार जाएगा। ये चीज जो है कर्म फिलोसफी में जानने की। अब एक कर्म भर है जिसकी व्यवस्था बिल्कुल अलग है, वो है आयु कर्म। वो अपने जीवन में 8 मौके आते हैं, 8 अवसर आते हैं जिनमें बनता है। पहली चीज, आयु कर्म प्रत्येक जीवन में 8 अवसर पर ही बढ़ता बनता है। उन्हीं को अपन जैन धर्म की भाषा में 8 अपकर्ष काल कहते हैं। आयु बंधने के अवसर को, आयु बंधने के 8 अवसरों को 8 अपकर्ष काल कहते हैं। ये ठीक है, कहीं भी एक जगह नोट कर लीजिएगा, 8 अपकर्ष काल या बराबर 8 आयु बंध के अवसर, ऐसा शब्द 8 अपकर्ष काल मतलब 8 आयु बंध के अवसर। ये लेकिन कब आएंगे इसका भी डिसाइड करते हैं कि पहला अपकर्ष काल आएगा जो हमने वर्तमान में आयु बांधी है, नवीन आयु बंध के लिए है ये, आगामी जीवन की आयु बांधने के लिए या 8 अपकर्ष काल आएंगे। जो आयु अपन बांध चुके हैं वो अपन ने पहले जीवन में बांधी थी, जो अपन भोग रहे हैं तो उसको कहते हैं, जो आयु अपन भोग रहे हैं उसको बोलते हैं भुज्यमान आयु, और जो आयु अपन बांधेंगे आगामी जीवन की उसको बद्धमान आयु कहेंगे। ऐसे करके ये नहीं भी याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं, जो वर्तमान अपन आयु बांधे जो जी रहे हैं वो भुज्यमान आयु है, जो आगे के लिए बांधेंगे बद्धमान आयु। तो आगे जो अपन आयु बांधेंगे उसके लिए 8 मौके अपने इस जीवन में आएंगे, आगे की आयु डिसाइड करने के लिए। और अगर उन 8 अवसर पर में से आयु बंध नहीं हुआ तो जीवन जो मरण के सबसे अल्प अंतर्मुहूर्त काल में मरण से पहले आयु बंध होगा। ये डरते हैं 8 अवसर आएंगे जिनमें आयु बंध हो सकता है, अगर नहीं होगा तो मरण के अंतर्मुहूर्त, वो भी छोटा अंतर्मुहूर्त, एक अंतर्मुहूर्त होता है 48 मिनट्स में, थोड़ा कम, एक समय कम 48 मिनट बराबर एक अंतर्मुहूर्त। और सबसे छोटा अंतर्मुहूर्त कौन सा होता, तो ज्यादा बड़ा नहीं होता, मैंने कहना चाहिए 1 सेकंड के बराबर भी हो सकता है एक अंतर्मुहूर्त, उतने में भी आयु बंद हो जाएगा। जैसे किसी का एक्सीडेंट होता है तो अपने को लगता है कि कब आयु बंद गई, तो तुरंत के तुरंत भी एक्सीडेंट के समय भी एक्सीडेंट हुआ और एक्सपायर होने के 2 मिनट पहले ही जो है आयु नहीं बांधी, फिर जीव चला जाएगा, भटकेगा नहीं। वो कोई भी जीव मर नहीं सकता नवीन आयु बांधे बिना, ये डेफिनेट है। तो इस तरह 8 अवसर आएंगे। पहला अवसर कब आएगा, जो अपन आयु जी रहे हैं, जो अपन बांध के अपने साथ लाए हैं, जिसको अपन जी रहे हैं, उसका 2/3 निकल जाने के बाद पहला अवसर, 2/3 हमने उदाहरण से अपन समझ लेंगे अभी। फिर जो शेष, मान लो उसमें नहीं बना तो फिर जो शेष रह जाएगा उसका 2/3 निकल जाने के बाद दूसरा मौका है। 1/3 मत लिखिए, इसलिए नहीं लिखी है क्योंकि अपने को बहुत लंबा कैलकुलेशन करना है। जो टोटल है उसका 2/3 निकल जाने पे फर्स्ट, फिर जो शेष बचा उसका 2/3 निकल जाने पे सेकंड, फिर जो शेष बचा उसका 2/3 निकल जाने पे थर्ड, फिर जो बचा उसका 2/3 निकालते जाइए, ऐसे करके 8 बार करिए, इसमें आयु बंधेगी इस तरह। अब मान लीजिए एक उदाहरण ले रहे अपन इसका समझने के लिए, आपका
आठवा
तो हो ही गया,
सात बार मानेंगे
नहीं, इस बार 8 मौके आएंगे कंप्लीट। हम अभी कैलकुलेशन बता देते हैं अपन को एकदम क्लियर हो जाए। जैसे 81 वर्ष की किसी की आयु है, वर्तमान की आयु एग्जाम्पल के लिए, 2/3 कितना हुआ 54, 54 साल में पहला मौका आएगा, बचे कितने 27 है ना, उसमें से फिर 2/3 निकालिए, 18 वर्ष पे निकाल दीजिएगा है, फिर दूसरा मौका आ गया। अब बचे सिर्फ आयु के 9 वर्ष से, तो 9 वर्ष में से 6 वर्ष फिर निकाल दीजिएगा, तब तीसरा मौका आ जाएगा, माने 3 वर्ष बचे हैं तब आयु का तीसरा अवसर आया। अब 3 वर्ष में से फिर 2 वर्ष निकाल दीजिए 2/3, तो फिर 1 वर्ष भर माने 80 साल का जब आदमी हो जाएगा, जब चौथा मौका आया उसका, 81 वर्ष के आदमी के जीवन में चौथा मौका कब आया, जब 80 साल का वो हो गया, तब मान लो नहीं बंधे तो है, और बंद गया तो फिर कोई बात नहीं, बाकी सब में अब क्या होता है वो अपन बाद में समझेंगे कि पहले पहले अवसर में बंद गया तो बाकी अवसर में क्या होगा। 80 वर्ष की आयु हो गई, चौथा मौका आ गया, अब जो 1 वर्ष बचा है अभी भी नहीं हुआ मान लो चौथे अवसर पर भी, तो 1 वर्ष में से फिर लगभग कितना निकाल दीजिएगा, 8 महीने निकाल दीजिएगा, तो कितना 5वां मौका आ गया, फिर 4 महीने बचे हैं, फिर उसमें से भी 2/3 निकाल दीजिए, लगभग 2.5 महीने निकाल दीजिए, 3 महीने हाँ, तो ये इसमें 6वां मौका आया है कि 6वां मौका, फिर जो बचे हैं 40 दिन उसमें से भी निकाल दीजिएगा, 30 दिन निकाल दीजिए मान लीजिएगा, 30 निकालने हैं, 26 निकाल दीजिएगा, उतने दिन निकालने के बाद 7वां मौका आ गया, फिर जो बचे शेष 15 दिन बचे मान लीजिए, 15 दिन में से भी जो है 8वां मौका आने के लिए, फिर निकाल दीजिए उतना लगभग 4 दिन शेष रहे तब 8वां मौका उसका, वो भी खाली निकल गया, तो अब अभी नहीं बंधा है, तब फिर जाकर के आयु बंधेगी मरण के थोड़े पहले। ये इतना हो गया ठीक है ना, 8 मौके होंगे। अब इनका कोई ऐसा निकाल लीजिएगा वर्ष का जिसमें सही सही वो हो जाए डिवाइडेशन, 2/3 किस तरह होगा, और ये अपने को मालूम नहीं रहता है कि अपनी कितनी आयु लेके आए हैं अपन, तो जो आयु अपन को मालूम नहीं है, तो फिर हमने इस आयु कर्म के सिद्धांत को पढ़ के क्या सीखा कि किसी भी समय हमारी आयु बंद हो सकता है, हमें सावधान रहना चाहिए। आयु कर्म के साथ में ऐसा है कि हमारा वश नहीं चलता, हम संक्रमण नहीं कर सकते, हम उत्कर्षण अपकर्षण कर सकते, आयु की उदीर्णा भी होती है तो पाप माना जाता है, आयु की उदीर्णा करना पाप है क्योंकि आपने डैमेज किया अपनी आयु को, उदीर्णा में डैमेज होते हैं, आयु की निर्दरा नहीं की जाती है, आयु का क्षय नहीं किया जा सकता है, आयु का सिर्फ कमी बेशी उत्कर्षण अपकर्षण किया जा सकता, वो भी उन 8 अवसरों में से किसी अवसर में ही हो सकता, हमेशा नहीं हो सकता। सपोज करिए पहले वाले अवसर पर किसी व्यक्ति ने, जैसे शैनिक का उदाहरण आता हमेशा कि उनने 7 में नरक की आयु बांध ली, अब 7 में नरक की आयु बांध ली, लेकिन जब उनके जीवन में आ गया परिवर्तन, तो जीवन में परिवर्तन आ गया तो अगला अवसर जब आयु के बंधन का आया तब उन्होंने जो है उसको माइल्ड कर लिया, उसको कम कर लिया, पहले नरक की आयु हो गई वो, लेकिन नरक जाना पड़े, ये नहीं कर सकते कि नरक की आयु को मनुष्य में चेंज कर दो या मनुष्य की देह में चेंज कर दो, कितना भी अच्छा करोगे फिर पूरे जीवन में, लेकिन जो आयु बन गई वहां जाना पड़ेगा, पर जो अच्छा करा है वो तो डिपॉजिट होगा, वहां आपको उतनी फैसिलिटीज मिल जाएंगी। जैसे कि अपन देखते हैं कि तिरंज पशु तो है, कुत्ता तो है, लेकिन एसी कार में घूम रहा है, वो चूक गया, आयु बंद के समय उसकी चूक हो गई, तो वो कुत्ते की आयु में तो पहुंच गया, आयु बंद तो कर ली तिरंज की, कुत्ता बन गया, लेकिन बाकी उसके कृत अच्छे थे जीवन में, उसका बेनिफिट मिल रहा उसको, वो एसी कार में घूम रहा। और एक मनुष्य जिसने मनुष्य आयु का तो बंद किया है, रस्ते के किनारे 2-2 पैसे के लिए एक दाने के लिए भीख मांगा, उसने मनुष्य आयु किसी बहुत विशेष कंडीशन में अच्छे सुख परिणाम थे जिस समय उसने कर ली, लेकिन बाकी पूरे समय पाप करता रहा, उसका फल उसको मिल रहा। ये आयु कर्म के साथ में, इसलिए हम एक बार आयु बांध लेते हैं तो उसमें फिर हम कोई वो नहीं कर सकते, इजाफा नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत आयु मैंने कम ज्यादा कर सकते हैं कि 33 सागर की आयु बांधी थी तो कम कर लीजिए, 1-2 सागर की बांध लीजिएगा, 100 वर्ष की आयु बांधी थी पशु की तो उसको कम कर लीजिए, ज्यादा होगी 10 वर्ष में पशु होके आप दूसरी आयु बांध सकेंगे, ये तो कर सकते हैं, पर और इससे ज्यादा फर्क नहीं कर सकते। देवों में भी जो आयु बंध गई है तो वो भोगना, नरक की बंध गई तो नरक की, तीर्थंकर भी क्यों ना हो नरक जाना पड़ेगा अगर नरक आयु बांध ली। अब इसमें एक चीज है कि इन आठ अपकर्ष काल जो अवसर हैं उनमें भी आयु किन परिणामों से बनती है, तो कहते हैं मीडियम होना चाहिए, एकदम हाई भी नहीं, बहुत तीव्र परिणाम भी नहीं होना चाहिए, बहुत मंद भी नहीं होना चाहिए, और मीडियम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि कोई व्यक्ति अगर बहुत अधिक पाप कर रहा है, बहुत तीव्र परिणाम है उसके पाप के, और अचानक जो है उसने बहुत सब छोड़ छाड़ के बहुत मंद परिणाम कर लिए, उसी समय आयु बंध का काल आया, तो उसको तो बेनिफिट मिल जाएगा, उसको बेनिफिट नहीं देना। इसी तरह से कोई व्यक्ति बहुत शुभ परिणाम रखे था, लेकिन जब आयु बंध का मौका आया तब बहुत संक्लिष्ट परिणाम थे उसके, उस समय आयु नहीं बंधे, क्योंकि उसको बेचारे को पनिशमेंट है, तो बहुत दिक्कत हो गया कि हमेशा तो ठीक रहा लेकिन क्षण भर के लिए बहुत तीव्रता आ गई, उसी समय आयु बंध गई। कहते ऐसे नहीं बनवाएंगे, ना बहुत तीव्रता में बंधेगी ना बहुत मंदता में, मॉडरेट होना चाहिए। जो हमारे लेशा हमारी है वो मध्यम लेशा के परिणाम, अपनी भाषा में कहेंगे लेशा के मध्यम परिणाम, मतलब हमारी भाव दशा बहुत संक्लेश और बहुत मंद नहीं होनी चाहिए, मध्यम रूप में होगी तब उस अवसर पे। देखो कितना सारा मिलेगा तब होगा कि जितनी आयु है उसमें से 2/3 जब निकलेगा तब उस समय मध्यम परिणाम बनेंगे, तो बनेगी आयु, अन्यथा खाली निकल जाए, फिर वेट करिएगा, फिर आगे कहीं बनेंगे। इसलिए बहुत अलर्टनेस की आवश्यकता, आयु कर्म के लिए बहुत सावधान, हमेशा परिणामों में निर्मलता बनी रहनी चाहिए, अन्यथा कभी भी बन सकता है आयु कर्म। पर इतना जरूर है कि जो व्यक्ति व्रत नियम संयम ले लेता है श्रद्धा पूर्वक, ये ध्यान रखिएगा, परमार्थ का विचार करके, संसार के भोग उपभोग की सामग्री मिले इसलिए व्रती हो रहा हूँ ऐसा नहीं, मुझे संसार के पार होने के लिए व्रत ग्रहण करता हूँ भगवान के ऊपर श्रद्धा रखती है, तो उस व्यक्ति को तय है कि वो सिवाय देवायु के दूसरी आयु का बंद नहीं करेगा, कभी भी करेगा। इतना इसमें जरूर, जो व्यक्ति व्रत ले लेगा, छोटा सा भी व्रत ले लेगा लेकिन पूरी श्रद्धा के साथ में, तो उसके लिए देवायु, या फिर इतने डिक्लेयर इतने किया जा सकता और बाकी के लिए नहीं डिक्लेयर किया जा सकता उसमें। और जिस व्यक्ति के आयु का बंद हो गया होगा नरक आयु का, वो व्यक्ति व्रत नियम संयम लेने का भाव तक नहीं करेगा, ये भी एक डिक्लेरेशन किया है। जिस व्यक्ति के नरक आयु बंद गई होगी उस व्यक्ति को व्रत नियम संयम लेने की भावना तक नहीं होगी, ले भी नहीं पाया, अगर लेगा तो तोड़ देगा, दूसरा कोई लेता होगा तो कहेगा क्या रखा है इस सब में, बेकार की सौगंध ले रहा, क्या है सौगंध वोगन नहीं देगा, व्रत लेने की भावना तक नहीं होगी अगर नरक आयु बंद गई होगी उसके लिए तो। और अगर उसको कोई आयु तब व्रत हो पाए, अगर व्रत ले लिया है तो फिर निश्चिंत रहिए, श्रद्धा पूर्वक व्रत ले लिया है निश्चिंत नरक नहीं जा सकते। मनुष्य भी अगर मनुष्य आयु किसी ने बांध ली है, तिरंच आयु किसी ने बांध ली, तब भी वो व्रत नहीं ले पाए, ये भी ध्यान रखिए। तीन आयु अशुभ आयु का बंद कर लिया है तो नरक की, मनुष्य की या की तिरंच की आयु बांध ली तो व्रत नहीं ले सकेगा, देव आयु का बंद किया है तो व्रत ले सकता, या फिर किसी आयु का बंद नहीं किया है तो व्रत ले लेगा। व्रती आदमी मिथ्या दृष्टि होगा तब भी जो है वो नरक नहीं जाएगा, ये ध्यान रखें। व्रत नियम संयम ले लिए हैं, मिथ्या भी है साथ में तो भी नरक नहीं जाएगा, क्योंकि व्रती है, महाव्रती हो जाए अगर वो मिथ्या दृष्टि रहे तब भी ग्रह वेग में जाएगा, नरक नहीं जाता। देखो आप इसलिए व्रत जो जैनाचार का महत्व जो है यहाँ समझ में आएगा आयु बंधने के समय, कि अगर हम सम्यक मार्ग भले ही श्रद्धा पूर्वक करें तब तो फिर कोई बात ही नहीं है परमार्थ के लिए, और अगर स्वार्थ के लिए भी किया है तब भी आहित नहीं होगा। अरे कोई जरूरत नहीं, परमार्थ स्वार्थ के लिए देते हैं, संसार में अच्छे भोग उपभोग की सामग्री मिलेगी, सुनते हैं कि अब इन्हें खाओ तो स्वर्गों के भोग मिला, तो कल्लू का फर्क पड़ता है, दिन में खाने होते पीते तो मिले अच्छे, ऐसे विचार करते ले भीतर में कहीं रह जाती है, क्या कह सकते, भीतर की गांठ खुली कि नहीं खुली हुई है, ग्रंथि बहुत कॉम्प्लेक्स जो है बहुत कठिन है, इसलिए अब पीछे कैसे ये आयु के बारे में।
कर्म फिलोसफी के बारे में उसमें एक हमने कर्म ऐसा माना था जिसमें ये कहते थे अपने शरीर के अवयव अपने अंगेस्ट ही काम करने लगते हैं, उपघात। तो अगर हम इस कर्म फिलोसफी से अपना कॉजेशन ऑफ डिजीज की जो हमारी थ्योरी है वो तीन मेन चीज़ों पर टिकी हुई है, कहते हैं जेनेटिक, एनवायरमेंटल एंड इम्यूनोलॉजिकल। तो जेनेटिक में तो हम कहते हैं कि पूर्व जन्म के कर्म जो है वो वर्तमान में वही है, तो एनवायरमेंटल में है कि जो वर्तमान में कर्म कर रहे हैं, और इम्यूनोलॉजिकल में है जो कर्म है क्योंकि ऑटो एंटीबॉडीज बन जाती है, इम्यूनोलॉजी की टाइप होती है, तो ऑटो इम्यून डिजीज जो है उनको उससे
उसी को कहेंगे उपघातना, ऐसे अवयव प्राप्त हो जाना जिससे कि स्वयं ही अपना घात करने के लिए प्रवृत्त हो जाता है। कर्म भी मानेंगे, हेरिडिटी भी मानेंगे, वो भी लेंगे जेनेटिक्स
लेकिन पानी सामने देख के उसके मन में आ रहा है पी लेते,
लेकिन लगिया नहीं तो दोष भर लगा है, भंग नहीं हुआ। व्रत ले लेने के बाद उस चीज के ग्रहण की आकांक्षा हो जाने से दोष तो लग जाएगा लेकिन व्रत भंग नहीं होगा। पानी पी ही लिया तो भंग ही होगा, टूट ही गया, पर दोष लगने पे तो हम संभाल सकते हैं, भंग हो जाने पर तो कोई संभाल नहीं। इसलिए कोई शुरू में करे और कई लोग ऐसा कहने लगते ना कि ठीक है छोड़ तो दो, मगर खावे की आकांक्षा तो बनी रही, तो क्या मतलब है? कहते नहीं खा नहीं लेना, आकांक्षा के लिए खा लोगे तो पूरे टूट जाएगा, लेकिन अब जीतो धीरे धीरे, आकांक्षा तो हो रही पर उस आकांक्षा को भी जीतो। देखो लेकिन हर जगह नहीं लगा लेना उसको, आचरण की प्रक्रिया अलग है। वैसे भावना प्रधान है तो ध्यान के लिए कहते हैं कि मरघट में बैठ जाओ और आहार के लाने उतर ले लो, आहार की शुद्धि के लिए चौके की एक एक शुद्धि बताएंगे, और ध्यान के लिए कहते हैं जहाँ चाहे मरघट में हड्डियों के बीच में बैठ जाओ तो भी ध्यान लगा लो, और यहाँ आहार की प्रक्रिया करेंगे तो शुद्धि बताएंगे। क्यों? भावात्मक शुद्धि है, क्या करना बाह्य शुद्धि का? कहते नहीं, बाह्य शुद्धि भी आवश्यक है। बाह्य शुद्धि पर हमने इसलिए महत्व नहीं दिया क्योंकि बाह्य शुद्धि हो जाने पर भावात्मक शुद्धि हो या नहीं हो, लेकिन जिसकी भावात्मक शुद्धि उसकी बाह्य शुद्धि हुए बिना नहीं रहेगी। गिलास है दूध का, उसमें दूध भीतर भरा है और ऊपर गंदगी लगा दो और फिर कहो पी लो, क्यों? बाहर से क्या लेना, भीतर तो दूध बहुत अच्छा है। ये कहीं जरा ही हाथ लगा दो कछु खराब चीज का उसके ऊपर, खराब हो गया, गंदा ग्लास हो गया, तो भीतर दूध बहुत अच्छा बने रहे। बाहर शुद्धि भी आवश्यक है, भीतर की शुद्धि के साथ उसको अपने निग्लेक्ट नहीं किया है पर इम्पोर्टेंस भी नहीं दी है, ये हमारा आशय। तो
तो कुछ लोग लॉजिक ये देते हैं कि उसमें ऑटो डाइजेशन तो हो रहा है ना आपकी बॉडी का, और आप कहते हैं कि हम
ठीक है, समझ गए। हमारे यहाँ तो सीधा प्रश्न किया है कि जब भी उपवास या तप करेंगे उसमें जीव राशि का घात होगा और हिंसा का पाप लगेगा, ये क्वेश्चन उठाया है बड़े वाले ग्रंथ में, धबला जी ने उठाया है कि जो मुनि उपवास करते हैं वे अपना ही मांस स्वयं खा लेते हैं, ऐसा कह दिया हिंदी मैंने सीधा सीधा, उनका अपना मांस उसमें कंज्यूम होगा, जो स्टोर था वो सब खत्म होगा, जो शरीर के आश्रित अनंत बैक्टीरिया थे उनको भोजन नहीं दिया उनको मारने का पाप नहीं लगेगा। तो कहते हमारा इंटेंशन ये नहीं था, हमारा इंटेंशन तो तपस्या के द्वारा आत्म आनंद प्राप्त करने का था, इसलिए उसमें हमें दोष नहीं लगेगा। हमने फास्ट इसलिए नहीं किया कि जिस सबरे जितने जीव है वे मर जा, हमारा इंटेंशन नहीं, इसलिए उनको ये कहेंगे हम कि हमारा इंटेंशन वहाँ ये नहीं, हम तप करके और अपने उसको आत्मा को निर्मल बनाने के लिए कर रहे हैं, आत्मशुद्धि के लिए, हम आत्मशोधन की प्रक्रिया है किसी को, नहीं तो फिर तो कोई तपस्या ही ना कर पाएगा। देखना अगर तपस्या से तीर्थ सबसे ज्यादा होता है तीर्थंकर भगवान को, जब उनका परम आधारित शरीर होता है शुक्ल ध्यान के समय शरीर में से सब कुछ नष्ट हो जाता है, एक भी बैक्टीरिया नहीं बचता से, जितने अनंत जीव राशि थी निगोदिया जीव राशि से रहत हो जाता है शरीर, तो क्या कहेंगे उसको, हिंसा कहेंगे? कहते नहीं, विशुद्धि को इम्प्योरिटीज को अलग करने को आप क्या कहेंगे? भाई तो हम अपनी जो फॉरेन मटेरियल था उसको हमने अलग भर किया है, हमें उसको डिस्टर्ब करने का नहीं था, आपने हमारा आश्रय ले लिया, हम पहले से आपको बता दे रहे हैं कि आप या तो दूसरी जगह छोड़ दीजिए स्थान और या फिर आप रहेंगे तो इसमें, इसीलिए तो सावधानी रखते ना, कटिंग करवाएंगे इसमें उससे तो जितनी जीव राशि पैदा हुई मर जाएगी, अपने हाथ से कुल करके अलग कर दिया तो उसके आश्रित जो जीव हैं कई बार तो दिख जाते हैं, वो निकल करके गिर जाते हैं उसमें से कुल करने से, इसलिए तो इसको ऐसा करते हैं, अन्यथा उस तरह से करते हैं तो वो जितने भी हैं उसके आश्रित दो ज्यादा से ज्यादा चार महीने तक बढ़ा सकते हैं, बढ़ेंगे बाल तो चार महीने उसके पहले पहले निकाल के अलग कर दो नहीं तो जीव राशि पैदा हो जाए, इतना तो ध्यान रखते हैं। और वहाँ जो हिंसा होती है उसमें जो भी हुआ है उसके लिए उपास करते हैं, अब उपास में होने वाली हिंसा के लिए क्या करेंगे बताइए? हिंसा से बचने के लिए उपास करें, अब वो कह रहे हैं उपास में भी हिंसा होगी, अब उसके लिए क्या करेंगे? वो हमारा इंटेंशन नहीं छोड़े, हमने बहुत कोशिश की सब चीज से बचने। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर तो अपने को देना पड़ेगा, अपने सब पढ़ा है अब तो इन्हीं चीजों का उपयोग करना पड़ेगा। अब सारे आदमी ने कहा था दोपहर में उनको कि अब तो क्वेश्चन पूछिएगा, क्वेश्चन मतलब जो रोजमर्रा के जीवन में अपन देखते हैं उनको इससे कहाँ जोड़ेंगे। अब ये भी अप्लाइड अपने लिए आना चाहिए, पढ़ तो लिया अपन ने, जैसे तो मैं सब पढ़ा दूंगा ज्ञान के बारे में, सबके बारे में बहुत सारा, लेकिन पढ़ना नहीं है। अब जितना अपन ने पढ़ लिया उसके लिए अपन और देखें कि इसमें कहाँ, इसमें कहाँ, इसमें क्या होगा, किसी ने हमारे साथ ऐसा करा, उस समय हमारे ऐसे भाव हुए तो कौन सा कर्म बंधा। अब जरा कर्म क्लास की उपयोग तो करिए, तब तो आएगा फील्ड में। 148 कर्म तो रट लिया बने, लेकिन उनको अपने प्रैक्टिकल में ये हैं। और
पंचम काल के लास्ट के इवेंट्स हैं वो कल हमने डिस्क्राइब की थी, तो उसमें हमारे लिए ये प्रेडिक्टेड है, कोई थ्योरी है हमारे पास, हाइपोथेसिस है, इसे किस तरह से?
हाइपोथेसिस नहीं है ये, जब केवली भगवान या तीर्थंकर जो अंतिम होते हैं, वे अंतिम तीर्थंकर से कोई व्यक्ति पूछता है कि पंचम काल के अंत में कौन कौन रहेगा, तो वे उसमें डिक्लेयर कर देते अपने ज्ञान के द्वारा, वो डिक्लेरेशन है। अब लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ये मुनि और ये आदि का नाम दे दिया है, लेकिन उस समय कौन आत्मा उस नाम से होगी, क्या कहते हैं वो, कौन सा अंतिम साधु होगा, कौन सा अंतिम आरिका होगी, कौन सा श्रावक और कौन सी श्राविका होगी, ये तो कहीं नहीं लिखा, पर लिखा है कि चार लोग ऐसे, कितने ही डिक्लेरेशन, ये हमेशा होगी।
रिद्धिधारी
का मतलब होता है सात प्रकार की विद्या होती है, कभी अपन इसको मैंने सोचा है कि तेसर शलाका पुरुषों के बारे में बताऊंगा एक दिन, अपन इसी पर चर्चा करेंगे कि 24 तीर्थंकर कौन से हैं, 63 में कौन कौन शामिल है, तो 24 तीर्थंकर है 12 चक्रवर्ती, तो तीर्थंकर की अपनी क्या विशेषताएं होती है, उनकी माँ को जो स्वप्न आते हैं उनके पीछे क्या लॉजिक है, फिर बलभद्र कौन होते, नारायण कौन होते, प्रतिनारायण कौन होते, उनकी अपनी विशेषताएं क्या हैं, इनकी माँ को स्वप्न आते हैं तो उनके क्या अर्थ हैं, रिद्धियाँ क्या हैं, क्योंकि ये सब रिद्धि होती हैं, गणधर को पढ़ेंगे तो 63 रिद्धि पढ़ेंगे, वो अपन एक अलग टॉपिक है। इसमें जो है अपन अभी श्रमणाचार के बारे में अपन पढ़ रहे थे कि एक श्रमण को कितने प्रकार का आचरण पालन करना पड़ता है, या ये कहिएगा उसके भीतर ये चीजें स्वतः आ जाती हैं। मैं तो ये मान के चलता हूँ साधु के अंदर इतनी चीजें स्वतः आ जाती हैं कि वो अहिंसा का पूरी तरह पालन करता है, सत्य का पूरी तरह पालन करता है, अचोरी का, वो किसी को पीड़ा नहीं पहुँचाएगा, वो झूठ नहीं बोलेगा, वो थेफ्ट, वो चोरी की भावना भी नहीं करेगा, थोड़े किसी के भी चुराने का मन तक नहीं करेगा, किसी चीज को अपना पजेशन नहीं करेगा किसी चीज पर, और अपने स्वभाव से विचलित होना कुशील कहलाता, तो वो नहीं करेगा, अपने स्वभाव में शील में रहेगा, ये बनने से। तो इस तरह से 5 महाव्रत उसके भीतर आएंगे, तो समझ चुके हैं अहिंसा, अब इनकी डेफिनेशन की भी जरूरत नहीं है, अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचोरी महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और अपरिग्रह। 5 समितियों के बारे में भी अपन ने कल पढ़ा था। समिति का मतलब होता है सावधानी पूर्वक की जाने वाली क्रिया, चलते समय जब हम सावधानी रखते हैं वो क्रिया समिति, भोजन लेते समय जो सावधानी रखी जाती है वो इष्ण समिति के अंतर्गत, बोलते समय जो सावधानी पूर्वक बोला जाता है हित मित्र प्रिय, वो भाषा समिति के, पुस्तक कमंडलू पीछी जो भी उपकरण है उनको उठाते रखते समय जो सावधानी रखी जाती है उस समिति को बोलते हैं आदान निक्षेपण, रखना उठाना, मल मूत्र इत्यादि का विसर्जन करते समय जो सावधानी रखी जाती है उसको प्रतिष्ठापन। इस तरह से 5 समितियां, ये साधु किसके लिए करता है, अहिंसा के पालन, क्योंकि ऐसा करेगा तो अहिंसा का पालन हो। फिर 5 इंद्रियों का निरोध कर देता है, निरोध करने का अर्थ है कि उनके विषयों की आकांक्षा नहीं करता कि मुझे ऐसा ही मिले या ऐसा ही, जो मिल जाता है उसे साफ अपने योग होने पर उसे ग्रहण करता है, अन्यथा उसकी आकांक्षा नहीं रखता, अच्छी बुरी जो भी स्थिति आती है उसमें सब में समता रखता है, इसलिए 5 इंद्रियों के विषय को जीत लेता है। ये 5 इंद्रिय में 15 हो गए, 6 आवश्यक होते हैं जो डेली करने के हैं, ऐसे ही श्रावक जो होते हैं ऐसे ही साधु जो होते हैं, साधु को 6 चीजें रोज क्या करनी पड़ती हैं, इसको जानने से आपको मालूम क्या होगा, कोई आपके साधु के बारे में पूछेगा तो आप बता सकेंगे कि वो इतना इतना करते हैं, इस तरह उनकी पूरी दिनचर्या ऐसी रहती, 6 आवश्यक उनको करना जरूरी है। सबसे पहले सामायिक के ब्रैकेट में रख लीजिए समता परिणाम रखना, या कि 3 संध्याओं में सब प्रकार की क्रियाओं को रोक करके आत्म ध्यान में लीन हो जाना, इसको बोलेंगे सामायिक। मुनियों के लिए आत्म ध्यान में लीन होते हैं तीन संध्याओं में। वैसे तो उनको निरंतर समता परिणाम है ही, 24 घंटे उनकी सामायिक है, पर तीन विशेष संध्याओं में सुबह दोपहर और शाम को तीन संध्याओं में आत्म ध्यान में लीन रहते हैं, वो कहलाती उनकी सामायिक। फिर उसके बाद सामायिक का समय होता है सामायिक की संध्या काल लिख रहे हैं। संध्या काल का मतलब है सूर्य उदय के 72 मिनट पहले से सूर्य उदय के 72 मिनट बाद तक का समय, 144 मिनट का समय, ये 6 घड़ी का समय सामायिक का समय है। ऐसे ही दोपहर में मिड में 12 बजे आने से पहले सूर्य के 72 मिनट पहले 72 मिनट बाद तक, वो सामायिक का काल है। इसमें जितनी देर जिसको सामायिक करनी हो, सबसे कम समय है सामायिक करने का 48 मिनट और मैक्सिमम है मैंने 144। बीच वाला कितना भी जिसको जितना करना, मिनिमम तो 48 मिनट तो करना ही पड़ेगा। एक घड़ी बराबर 24 मिनट, तो ऐसी भाषा बोलेंगे अपन, दो घड़ी करना है सामायिक कम से कम, या मैक्सिमम 6 घड़ी करना है, तो 24 मिनट की एक घड़ी होती है। इस तरह ये हो गया, तीन संध्याओं में करते हैं। संध्या क्या कहलाती है, तो ट्रांजिशन पीरियड है, वो संधि काल है, जब सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य अस्त हो रहा है और सूर्य मिड में है, ये तीन काल।
तीनों में
अलग अलग, एक एक में कम से कम 48 और ज्यादा से ज्यादा 2.5 घंटे 144
जितना।
ये हो गया। फिर सामायिक के बाद में स्तुति, 24 तीर्थंकरों के गुणों का स्मरण करना, ये स्तुति है। और फिर तीसरा आवश्यक है वंदना, किसी एक तीर्थंकर के गुणों का स्मरण करना, उन्हें प्रणाम करना, ये वंदना अलग अलग करना पड़ेगा। 24 तीर्थंकर का स्तवन अलग, जो स्तुति बोलेंगे 24 तीर्थंकरों के गुणों का स्मरण, और किसी एक तीर्थंकर विशेष के गुणों का स्मरण कहलाएगा वंदना। इतना फर्क है, दो अलग अलग आवश्यक हो गए। फिर तीसरा प्रतिक्रमण, चौथे नंबर का प्रतिक्रमण, किए गए दोषों के निराकरण की विधि प्रतिक्रमण कहलाएगा। किए गए दोषों के निराकरण की विधि को प्रतिक्रमण कहते हैं। कृत दोष निराकरणम प्रतिक्रमणम, ऐसी परिभाषा। फिर प्रतिक्रमण भी जितनी बार सामायिक करेंगे उसके पहले, हाँ ये इसमें नए दोष सामायिक से पहले, सामायिक जितनी तीन सामायिक होंगी तो तीन प्रतिक्रमण होंगे। स्तुति तो तीन बार, एक्चुअली मैं बताऊंगा कि 6 आवश्यक, एक बार करते हैं तो एक बार में 6 ही हो जाते पूरे, एक करते हैं तो 6 हो जाते हैं। हम लोग प्रतिमल करते हैं उसी में स्तुति हो जाती है, उसी में वंदना हो जाती है, उसी में हमारा सामायिक हो जाता है, सब हो जाता है। हाँ नहीं, एक का भी 48 मिनट है और सबका मिल करके भी 48 मिनट, एक में सब हो जाते हैं इसलिए, पर करना सभी पड़ते हैं अलग अलग। प्रतिक्रमण सामायिक से पहले, दिन की समाप्ति पर प्रतिक्रमण कहलाता है दैवशिक, रात्रि के समाप्त होने पर किया जाने वाला कहलाता है रात्रिक, रात्रिक प्रतिक्रमण, दैवशिक प्रतिक्रमण। और मध्याह्न में हो दैवशिक, दिवस संबंधी दैवशिक, रात्रि संबंधी रात्रिक, ऐसा कर लीजिएगा। और पक्ष में एक बार किया जाता है वो पाक्षिक कहलाता है, 4 महीने में एक बार करने वाला प्रतिक्रमण चातुर्मासिक प्रतिक्रमण कहलाता, 1 वर्ष में जो एक बार किया जाता प्रतिक्रमण वो वार्षिक प्रतिक्रमण कहलाता, जीवन के अंत में मरण के समय जो प्रतिक्रमण किया जाता वो औत्मार्थिक प्रतिक्रमण कहलाता। इस तरह से ये प्रतिक्रमण होते हैं। और भोजन से वापस आने पर जो प्रतिक्रमण किया जाता है वो ईरियापथ प्रतिक्रमण कहलाता। इतने 7 प्रकार के हैं,
4 महीने में जो किया
जाता चातुर्मासिक औत्मार्थिक, सातों के नाम लिख लीजिएगा फिर से बताओ, दैवशिक रात्रिक लिख लिया, पाक्षिक चातुर्मासिक वार्षिक औत्मार्थिक और ईरियापथ औत्मार्थिक। कठिन है, एमए पढ़ रहे हो, कब लिखवा दे रहा हूँ लिख ले, वैसे इसके शुरुआत के लिए जरूरी नहीं था, शॉर्ट में समझ में किसी फिर भी लिखी। इतने तरह से प्रतिक्रमण होता है, प्रतिक्रमण का मतलब है हमारे किए गए दोषों के निराकरण के लिए की जाने वाली प्रक्रिया, वो प्रतिक्रमण है। प्रतिक्रम अपने तरफ वापस आ जाना, इसका दूसरा भी अर्थ है,
अतिक्रमण समझते हैं, एनक्रोचमेंट, तो उसका विपरीत प्रतिक्रमण, ज्यादा कठिन नहीं है। हमने जितना भी बाहर अपने को फैलाया था, बाहर की सारी यात्रा बंद करके अंतरंग यात्रा पे निकल पड़ते हैं। प्रति अपनी तरफ, क्रम मतलब चलना, अपने में लौट आने का नाम प्रतिक्रमण। ये भी हो गया है, इसमें अपने हुए गए दोषों के लिए मिथ्या में दुखम, मेरा ये दोष मिथ्या, मेरे से जो दोष जाने अनजाने हुआ है वो मिथ्या, उसके लिए पूरा पाठ करना पड़ता है, फील करना पड़ता है कि मैंने ऐसा अपराध किया, अपने अपराध की स्वीकृति का नाम प्रतिक्रमण। रोज दिन को भी करना, हमको दैवशी करना है, रात्रि करना है, ईर्ष्यापद, ये तो रोज करना पड़ेगा, फिर 15 दिन में एक भी करना पड़ेगा, 4 महीने वाला भी करना पड़ेगा, वार्षिक भी करना पड़ेगा, ये सब करना रहते हैं, रोज भी करना है, रोज 3 प्रतिक्रमण करना पड़ेगा, दैवशिक, रात्रि और ईर्ष्यापद, ये रोज करना पड़ेंगे। 15 दिन में एक बार करेंगे वार्षिक, 4 महीने फिर उसका अधिक होगा वो है। प्रतिक्रमण श्रावक भी करता है, पर वो शाम का चार्ज
है, बड़ा
शाम का चार्ज
है।
ये हो गया, फिर कितने हो गए? 4। पांचवें नंबर का आवश्यक है प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान ये आवश्यक है, दोष आगे नहीं करूंगा इस बात का संकल्प लेना, दोष हो जाने पर आगे दोष नहीं करूंगा इस बात का संकल्प लेना प्रत्याख्यान कहलाता है, आगे के लिए दोषों का त्याग। प्रत्याख्यान मतलब त्याग कहलाता है, आगे दोष नहीं करूंगा इस तरह का संकल्प करना।
ये भावना हमेशा रहती है,
हमेशा रहती, पर विशेष रूप से जब भोजन करके आते हैं तो भगवान के सामने निवेदन करते हैं कि कल तक के लिए चारों प्रकार के भोजन का त्याग करता हूँ, अभी जो मैंने किया है अब ऐसा कभी नहीं करूंगा, प्रत्याख्यान कर, मुझे भोजन लेना पड़ा कल तक के लिए, फिर भोजन का त्याग कर देता हूँ, प्रत्याख्यान अब जैसे मैंने त्याग कर दिया कि कल तक भोजन नहीं करूंगा, तो कोई कंडीशन नहीं बनेगी कि जिसमें भोजन कर लूं, भाव जरूर हो सकते हैं कि मैं भोजन कर लूं, तो वो दोष कहलाएगा, वो भंग नहीं कहलाएगा। तो दोष लगना अलग चीज है और भंग हो जाना व्रत का अलग है, भंग नहीं हो सकता। 28 मूल गुणों में दोष लग सकते हैं साधु के, उसके लिए प्रतिक्रमण करता है वो, लेकिन भंग नहीं करता एक भी गुण।
तो मैं वो वाला प्रतिक्रमण कौन सा कहलाएगा
जिसमें कि भंग हो जाए?
नहीं, भंग कोई दोष लगा उसका प्रतिक्रमण,
उसके उसी को प्रतिक्रमण करते हैं। जाने अनजाने जो भी हमसे दिन भर में दोष लग गए हो, हमारे 28 मूल गुण जो हमने पालन करे उनमें जो भी दोष लग गए हो, वो सब मेरे क्षम हो, मैं उनके लिए निवेदन करता हूँ, आलोचना करता हूँ, आगे नहीं करूंगा। हाँ, तब उस समय अधिक प्रतिक्रमण करना पड़ेगा, बाद में प्रायश्चित भी करना पड़ेगा, मेडिसिन ली है तो उपवास करना पड़ेगा।
ठीक नहीं है तो भी
सब करना पड़ेगा, ये तो सही ग्लान, किसी भी तरह का ग्लान भी हो तब भी क्षमा अवश्य करना पड़ेंगे, कोताही नहीं हो सकती जरा भी, या फिर मत मानो साधु, बनना है तो पूरा करना पड़ेगा, लेट के करो करो, सामायिक से करना एलग्जी के लिए, उनकी तीसरी प्रतिमा है तो 3 समय सामायिक करेंगे, वो उनके लिए तीसरी प्रतिमा के हिसाब से होगा, इसमें ये हमारे लिए आवश्यक है सामायिक नाम का। यही 28 हो गए ना राम
जी,
6 आवश्यक में 1 आवश्यक और रह गया, एक और रह गया, 5वें नंबर का हो, 6वें नंबर का क्या आएगा? कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग एक निश्चित समय के लिए शरीर से ममत्व छोड़ना, वैसे तो शरीर से ममत्व है ही नहीं, लेकिन फिर भी निश्चित समय के लिए शरीर से ममत्व छोड़ के भगवान के नाम का स्मरण करना, ये कायोत्सर्ग कहलाता है। एक कायोत्सर्ग मतलब 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना, 9 बार नमोकार पढ़ने में जितना समय लगता है उतने समय के लिए शरीर से ममत्व छोड़ना, भगवान का स्मरण करना। कायोत्सर्ग के ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, 9 बार नमस्कार मंत्र सहित शरीर से ममत्व का त्याग। काय धन उत्सर्ग, उत्सर्ग मतलब त्याग, तो शरीर का त्याग क्या करेंगे, क्या उठा के अलग रख देंगे? नहीं, उसमें ममत्व नहीं करेंगे, तो काय उत्सर्ग हो गया, ठीक है ना?
ये दिन में
हमको 28 बार करना है।
अब देखो ना, लघु शंका गए तो फिर कायस सर, जितनी बार गए उतनी बार कायस सर, शौच गए तो दो कायस सर, शाम को प्रतिक्रमण करा तो चार कायस सर, सुबह प्रतिक्रमण करा तो दो कायस सर, स्वाध्याय करेंगे तो फिर स्वाध्याय के पहले कायस सर, स्वाध्याय के बाद में, स्वाध्याय के मध्य में तीन कायस सर, चार संध्याओं में करेंगे तो चार त्रिबार 28 कायस सर करना रहते हैं पूरे दिन भर में। शाम को यहाँ बैठेंगे तो अब निष्ठापन करता हूँ, यहाँ से उठ के दूसरी जगह नहीं जाऊँगा रात भर के लिए, तो निष्ठापन योग का निष्ठापन एक कायस सर, सुबह से अब मैं उठूंगा यहाँ से विचरण करूंगा उसका कायस सर करो, निष्ठापन करो, तो ऐसे कुल मिला के 28 कायस सर करना पड़ते हैं।
नौ बार नमो
का, कम से कम 28 करना पड़ेगा, ज्यादा भी हो सकते हैं। दिखता है सीधा साधा सा, लेकिन यहाँ बैठो तो फिर पता लगता है कि
कितना
दिखता क्या करना कार बार ऐसे आगे आराम से बैठे और चर्चा कर रहे हैं, तुम लोग आ रहे हैं जैसे कार हो रही
नहीं है,
इसलिए तो टिका हुआ है ना जैन धर्म, साधु की चर्या अभी भी
शावक के लिए मुश्किल लगती है, वो साधु के लिए बहुत मुश्किल
है, सत्संग काल में तो
फिर भी कमी तो बहुत आ गई। ये हो गया छह आवश्यक, एक अब देखिएगा सात शेष कुण के नाम लिख लीजिएगा ताकि आज ये 28 पूरे हो जाए। दिन में एक बार भोजन, पहला मूल भोजन, दिन में एक बार भोजन, पहला मूल भोजन, मैंने ये हो गया 21 हो गए हैं, ये 22 नंबर का होगा, 15 और 6 21 ये 22वां होगा। दिन में एक बार भोजन, दूसरा मूल गुण खड़े होकर के भोजन, ये एक मूल गुण है, अगर पैर हिल गया तो बैठ जाओ अंतराय, डगमग हो गया अगर पैर तो, या उठ गया पैर तो अंतराय, तो खड़े होकर भोजन करना ये मूल गुण। तो दूसरा मूल
भोजन
नहीं फिर नहीं करेंगे, अगर पैर उठ गया या ऐसा हिल गया या कि उठते समय जो है इधर ऐसा लग गया तो भी गए, ऐसे उठते हैं ना जब, अभी तो ठीक है स्वस्थ हैं, फिर जब अस्वस्थ होंगे तो ऐसे उठते नहीं बनेगा, और ऐसे टच हो गया बैठ जाओ फिर, अब आ जाओ वापस अंतराय, अंतराय है जंघा स्पर्श हो गया भोजन के समय, या कि उठे और ऐसा हो गया खत्म, या कि किसी ने बहुत चिकना पदार्थ दे दिया और कर ले रहे थे तो ऐसे हो गएंगे तो बस खत्म, ऐसे ऐसे नहीं हुई अब, अभी लगता है आपको बहुत इजी, हम ऐसा भी कर लेंगे तब भी टच रहेगा, ये हैबिट हो गई और जरा ही किसी ने कुछ थोड़ा ऐसा हो गया मान लो, तो ये खड़े होके भोजन करना ये एक मूल गुण है, ये लिख लीजिएगा। फिर केश लुंचन, केश लुंचन ये 22-23-24 हो गए हैं, फिर निर्वस्त्र अचेत, वस्त्र धारण नहीं करेंगे किसी भी परिस्थिति में, आयुष्नान स्नान नहीं करेंगे, ये मूल गुण है आयुष्नान, अदंत धावन दांत नहीं धोएंगे, धोएंगे से मतलब चमकाएंगे नहीं, कचरा है तो निकला है फंसा हुआ होगा तो निकले कुल्ला करेंगे लेकिन उसको चमकाएंगे नहीं, अदंत धावन ये मूल गुण है। और भूसयन, भूसयन मतलब भूमि, चार चीजें हैं उसमें, भू सायन के अंतर्गत चार आएंगे, जमीन पर या कि कास्ट पलक पर या कि घास में या कि चटाई, घास मतलब पुआल, चार में से कोई एक स्वीकार कर भू सायन का अर्थ ये होगा, मतलब चार में से कोई एक, तो कास्ट पलक ये हो गया, इस पे सोएंगे या कि चटाई पे सोएंगे या फिर घास पर सोएंगे या फिर सीधे जमीन पर सोएंगे, और कोई चीज नहीं ग्रहण करेंगे, चटाई ग्रहण कर ली तो अब घास नहीं ले, घास ले ली तो चटाई अलग कर दो, ऐसा मतलब कास्ट पे चटाई ठीक है लेकिन कास्ट पे आपने घास डाल ली और चटाई भी ले ली तो गड़बड़, हमें पूरी जिंदगी के लिए है ये हिसाब,
जो एक चीज को चूज कर लिया वही
हमेशा के लिए, रेयर कंडीशन में अब बहुत अधिक है और शरीर की शक्ति नहीं है तो फिर जो है एक्सेप्शन है कि ठीक है घास भी ले लो ऊपर से चटाई नीचे बिछा लो, घास कोई चीज बहुत ठंडी है नीचे मान लो तो ऐसा कर देते हैं, बहुत एक्सेप्शन, लेकिन ये पाटा मिल गया है तो फिर कुछ नहीं करनी है,
एक हो गया। आचर्षी को चटाई भी नहीं लेते हैं, हमको चटाई देना पड़ती है। आचर्षी को ऐसे ही फलक पे लेट जाएंगे, फलक नहीं होगा तो नीचे जमीन पे लेट जाएंगे, सो जाएंगे, तो चटाई भी नहीं ओढ़ना। सर्दी में भी गर्मी आदमी तो ठीक है, सर्दी में भी बस ऐसे किया हमने, सो गए। सही तो वही है ओरिजिनल, तो बालक बस जैसा बालक रहता है। ये हो गया इस तरह से, ये 28 मूलगुण हो गए। अब इनके पीछे साइंस भी है, हर एक के पीछे खड़े होकर क्यों करने के पीछे क्या कारण है, दांत नहीं होते हैं तो क्या कारण, स्नान नहीं करते तो क्या कारण, वस्त्र नहीं धारण करते क्या कारण, क्या साइंस है, ये अपन कभी चर्चा करते
हैं।
खड़े होने के पीछे किसी के यहाँ गए हैं तो भिक्षा लेने गए हो, या कि उसके यहाँ पर वो क्या बोलते हैं अपन बुंदेलखंड में गौतरी का हाउस कहते कि गौतरी घर में गए, मतलब रिश्तेदारी निभावे गए कि अच्छे से बैठो, तुम्हारे सब कुछ सामान आया फिर खाओ, भिक्षा लेने गए चुपचाप ले और चले आओ जी खड़े खड़े। ये इसलिए एक चीज। दूसरा ये खड़े खड़े भोजन करेंगे अतृप्ति रहेगी, तृप्त नहीं हो सकते। आप कहीं भी बाहर खड़े होइए, प्याल से पानी पी लीजिएगा, तृप्ति नहीं होगी, ग्लास से पियेंगे इसमें तृप्ति नहीं होगी। दूसरी तो तीसरी चीज, खड़े खड़े भोजन करेंगे आवश्यकता से अधिक ग्रहण नहीं कर सकते। एक अंगुली पानी भी ज्यादा अंदर डाल दिया बैठते ही साथ बाहर आ जाए, स्टोमक जितना ले सकता है उतना ही लेना पड़ेगा। एक अंगुली भी ज्यादा हो जाएगा बाहर आ जाए, जैसे बैठेंगे तो बाहर आ जाएगा। अगर आपको आइडिया नहीं है, खड़े खड़े में तो पूरा खुला हुआ है स्टोमक, उसमें डाल दिया, अब तेरे बैठेंगे तो बैठेंगे तो बाहर आ जाए। तो जितना आवश्यक है उतना ही ग्रहण करेंगे। खड़े खड़े ग्रहण करना है तो अलर्टनेस बहुत जरूरी है, सावधानी, अप्रमत्त होकर ग्रहण करना। थोड़ा भी हिल डुल गए तो अंतराय माना जाएगा, बीच में से दोनों पैरों के चूहा निकल गया अंतराय हो गया, बिल्ली निकल गई अंतराय हो गया, या जंघा से स्पर्श हो गया तो अंतराय, अंजली छूट गई। इस तरह के सारे अंतराय खड़े होकर भी बनेंगे। और सबसे आखिरी बात ये कि मरण से पहले पैर डगमगा जाएंगे, ये इस बात की सूचना है कि मरण निकट है, अब भोजन की आकांक्षा छोड़। जिसको समाधि लेना है वो खड़े हो, बैठे बैठे तो टिके टिके भोजन करते करते ही पार हो जाऊंगा, लेकिन खड़े खड़े किसी की भी आज तक जो है मरण नहीं हुआ भोजन करते समय, बस ये पैर में कंपन होने लगा तो इसका मतलब सूचना मिल गई, अब कपते हैं पैर और हाथ की अंजलि नहीं बनेगी, ये ऐसे नहीं होगा, तो बस अब छोड़ दो भोजन की आकांक्षा छोड़ दो। इसलिए खड़े होके भोजन करना है और अंजलि नहीं होगी सबके पीछे। वो अपन 12 प्रकार के तप पढ़ेंगे तो उसमें 12 तप में एक वृत्ति परिसंख्या नाम का तप होता है, वो ये कहलाता है वृत्ति परिसंख्या। वृत्ति हमने कर ली ताकि राग द्वेष ना हो, ये भी अच्छे भैया जी हैं, ये भी अच्छे भैया जी हैं, लेकिन दो जने खड़े हैं, अब इनके न्याय के इनके न्याय, तो ये ज्यादा सोच में मत पड़ो, वहीं से तय करके निकलो ना कि इनके तय जाने, तो नहीं मिले तो लौटो फिर, ध्यान रखना रिस्की काम है फिर नहीं लेना तो ये भी है। और या फिर ऐसा तय कर लो कि दो चौके छोड़ के तीसरे में चले जाऊंगा, अब कोई भी हो सकता है, या कि ऐसा ऐसा खड़े होंगे तो ऐसे चले जाऊंगा, आज अपने दाएं तरफ जाऊंगा, आज अपने बाएं तरफ जाऊंगा, आज कहीं भी चले जाऊंगा, सब तरफ देखूंगा, जहां मन करेगा वहीं खड़े हो जाऊंगा, लेकिन भीतर जाकर के चार ही चीजें ग्रहण करूंगा, पांचवी ना लूंगा। भोजन की वृत्ति, दाता की वृत्ति, भोजन की वृत्ति, पात्र की वृत्ति और मोहल्ले की वृत्ति, चार प्रकार की वृत्ति में से कोई एक वृत्ति ले सकता है। अगर भोजन की वृत्ति ले ली है तो बाकी वृत्ति लेने की आवश्यकता नहीं है। कहीं चले जाओ, राजा के यहाँ चले जाओ, राजा के यहाँ नहीं जाते हालांकि, चाहे बड़े घर में मैंने रईस आदमी के यहाँ चले जाऊं, चाहे गरीब आदमी के यहाँ चले जाऊं, मुझे तो चार चीजें ही ग्रहण करनी है, दाल रोटी सब्जी लेना और पानी लेना, चाल लेना, चलो बस कहीं चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई पाप नहीं लगेगा। ये वृत्ति कहलाती है, मतलब लिमिटेशन, वृत्ति मतलब लिमिटेशन, परिसंख्या, वृत्ति परिसंख्यान, अपनी प्रवृत्ति को सीमित कर लेना अपनी आकांक्षा पर विजय पाने के लिए। ऐसी शर्त पूरी होगी तो लेऊंगा, नहीं तो नहीं लेऊंगा। मुश्किल क्यों कर सकते हैं, तो लिखा है उसने बड़ भागी रत्न त्रय धरे, तो हम तो अपनी पीठ अपने आप ठोक लेते हैं, भैया अच्छा हुआ बंद का होता है पुराना हिसाब।
उन लोगों को कैसा आइडिया लगता है जो आहार दे रहे होते हैं, कैसे वो ये अंदाजा लगाते हैं कि महाराज क्या विधि होगी, जैसे भगवान महावीर को उसमें आता है जिक्र की वो,
ये तो जो अपन चर्चा करेंगे इसके पीछे बहुत सारे मैंने अनुभव सुनाऊंगा आपको मंत्र, तो आपको आइडिया होगा कैसा किस तरह होता है।
तो
होगा तो हो ही ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जब भी होगा तो देवायु ही बंधेगी और कोई नहीं बंधेगी। तो फिर कोई बात नहीं है, या तो उसने आगे के लिए किसी भी आयु को बांध सकता, आपको उसका कोई वो नहीं है, चारों आयु में से कोई बन सकती, अब ये डिक्लेयर नहीं कर सकते क्योंकि व्रत उसने तोड़ दिया है। और या फिर जो है व्रत उसने ठीक ढंग से पालन नहीं किया है, व्रत को श्रद्धा पूर्वक नहीं किया, निभा है, इसलिए उसको नरक आयु बन गई, इसलिए उसने छोड़ दिया, ये भी कह सकते हैं। नहीं होंगे, सम्यक दर्शन तो हो जाएगा, वो भूमि चला जाएगा, कितना हो सकता तिरंत आयु मनुष्य आयु नरक आयु, किसी भी आयु का बंध हो जाएगा तो व्रत नहीं देगा, लिखा है ऐसा, क्या कहें अनुव्रत और महाव्रत दोनों सामान्य नहीं कि रात्रि भोजन को त्याग कर दो, प्रतिमा ले तो व्रत।